तारीख 26 जून दिन बुधवार, कार्यक्रम दिन भर। नमस्कार। भारत के दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात। अमेरिका ईरान तनाव पर भारत ने जताई चिंता।
We also had a discussion, a fairly detailed discussion of the situation in the Gulf.
दुनिया जहान में सुनिए अमेरिका ईरान के दरकते रिश्तों की कहानी। अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में था, पर ट्रंप ने इसे रद्द क्यों किया?
ये ट्रंप की जो एक्सप्लेनेशन है कि जो हम काउंटर अटैक करने वाले थे उसमें 150 लोग मारे जाते हैं और ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत यात्रा पर आए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका भारत के साथ विवादित मुद्दों के हल तलाशने की कोशिश करेगा। पोम्पियो ने कहा कि भारत अमरीका का एक अहम मित्र देश है और मौजूदा मतभेद भी दोस्ती का ही हिस्सा हैं। अमरीका के भारतीय स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर कर बढ़ाने के जवाब में भारत ने भी अमरीकी उत्पादों पर कर बढ़ाए थे। दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक विवाद की पृष्ठभूमि में पोम्पियो भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में झारखंड में तबरेज अंसारी की मौत पर बयान देते हुए कहा है कि उन्हें नौजवान की मौत पर दुख है और अपराधियों से कानून सख्ती से निपटेगा। संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहाँ है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना ये शोभा देता है क्या?
हरियाणा के रोहतक में सीवेज टैंक की सफाई करने उतरे 4 कर्मचारियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। ये चारों लोग शहर के जन स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे थे। ये चारों कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही टैंक में उतरे थे। रोहतक के जन स्वास्थ्य अधीक्षक विशाल बंसल के मुताबिक ये कर्मचारी टैंक की सफाई करने उतरे थे और ये घटना हो गई। बीते सप्ताह ही गुजरात में सीवर टैंक की सफाई के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई थी। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता ख्वान गोइदो ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि देश में राजनीतिक बदलाव के लिए बाहरी सेना का दखल भी एक विकल्प है। गोइदो ने कहा कि यदि राष्ट्रपति निकोलास मादुरो की सरकार सत्ता नहीं छोड़ती है और आम लोगों का दमन जारी रखती है तो बाहरी सेना का दखल अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन मकसद ये भी है कि बदलाव राजनीतिक हो और स्वतंत्र चुनावों से हो। अपने आप को देश का कानूनन राष्ट्रपति बताने वाले गोइदो का कहना है कि उनका अभियान दम नहीं तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लोग थके हुए हैं और डरे हुए हैं, लेकिन अभी भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वेनेजुएला का संकट समाप्त करने के 3 विकल्प हैं, चुनाव हों और इसी बीच सत्ता हस्तांतरण में अवैध सरकार का अंत हो जाए, हम सब यही चाहते हैं, या फिर निश्चित अवधि, उदाहरण के लिए 9 महीने के लिए सैन्य हस्तांतरण हो और उसके बाद स्वतंत्र चुनाव हों, और फिर तीसरा विकल्प है यदि ये तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ते हैं और लोगों को मारना जारी रखते हैं तो फिर ताकत से उन्हें हटाया जाए, लेकिन ये बाहरी सहयोग से ही होगा। असम में जारी की गई दूसरी NRC सूची में 1,00,000 से अधिक नए लोगों को नागरिकता रजिस्टर से बाहर रखा गया है। इससे पहले पिछले साल आई पहली सूची में 40,00,000 से अधिक लोगों को नागरिकता रजिस्टर से बाहर रखा गया था। जो लोग नागरिकता रजिस्टर से बाहर हैं वो अपने दावे खारिज होने पर भारत की नागरिकता गंवा देंगे। सरकार का कहना है कि पड़ोसी बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए ये प्रक्रिया ज़रूरी है। वहीं मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस प्रक्रिया के बाद असम में नस्लीय अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने चेताया है कि उनका देश अमेरिका की धमकियों और अपमान के दबाव में नहीं झुकेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारत के दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर भारत का पक्ष माइक पोम्पियो के सामने रखा। पोम्पियो ने इस बात को माना कि भारत और अमरीका के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन कहा कि दोनों देश इसे सुलझाने की कोशिश में हैं। बातचीत में दोनों देशों के बीच कौन कौन से मुद्दे उठे और दोनों ओर से क्या क्या कहा गया, हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली ने इस मुलाकात और उसके बाद जो बातें हुई उस पर नजर रखी है।
अमरीकी विदेश मंत्री का ये दौरा एक ऐसे समय में हुआ है जब खुद को सामरिक मित्र कहने वाले दोनों मुल्कों के बीच व्यापार को लेकर मतभेद कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि भारत और अमरीका के विदेश मंत्रियों ने दिल्ली में हुई साझा प्रेस वार्ता में कहा कि वो मतभेदों को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, अच्छे दोस्तों के बीच मतभेद होते ही हैं। अमेरिका का ध्येय साफ है, वो भारत के बड़े बाजार में और हिस्सा चाहता है और उसके लिए वो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने की मांग करता है। आज मैंने इन मामलों पर दोस्ती के माहौल में बातचीत की और मुझे लगता है कि हमारे दोनों मुल्कों के बीच इससे बेहतर रास्ते खुलेंगे। हम किसी भी तरह के आर्थिक मतभेद को दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। ये प्रयास न सिर्फ उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो दोनों देशों के बीच इस समय मौजूद हैं, बल्कि उन दिक्कतों को भी जो भविष्य में उभर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के शब्द। भारत ने तकरीबन 10 दिनों पहले 28 अमेरिकी निर्यातों पर सीमा शुल्क लगा दिया था। इसमें अमेरिकी सेब और बादाम भी शामिल हैं। भारत ने यह शुल्क अमेरिका के उस कदम के बाद लगाया था जिसमें भारतीय अल्मीनियम और स्टील पर अमेरिका ने शुल्क लागू कर दिया था। साथ ही अमेरिका के दबाव पर भारत को ईरान से तेल की खरीद भी रोकनी पड़ी है। अमेरिका भारत के रूसी मिसाइल सौदे S-400 पर भी इतराज कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमने खाड़ी के मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्हें मालूम है कि वहाँ पर भारत के काफी हित हैं। ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ हमारे व्यापार और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। हमने इंडो पैसिफिक पर भी बात की। इंडो पैसिफिक पर मैंने ये साफ कर दिया कि ये किसी के खिलाफ नहीं है और ये शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए है। ये थे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्द। एस जयशंकर का ये भी कहना था कि भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और अफगानिस्तान होते हुए मंगलवार रात भारत यात्रा पर पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि अमरीका की ईरान के खिलाफ एक गुट तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है। अमरीका और ईरान के बीच संबंध बिगड़ते ही जा रहे हैं और ट्रंप प्रशासन ने एशियाई देश पर नए आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
जिन मुद्दों पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच बातचीत हुई, उसमें सबसे बड़ी बात क्या रही? विश्लेषण के लिए मैंने बात की अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके नवतेज सरना से और उनसे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त क्या है।
नेचुरल था कि ईरान और गल्फ पे बात होगी क्योंकि रीजनल टेंशन, ग्लोबल टेंशन उसी कारण बढ़ी हुई है। आजकल जैसे डॉक्टर जयशंकर ने भी बोला कि हमने अपना व्यू बताया, अपनी कंसर्न्स बताई। हमारी कंसर्न्स दो तीन है। सबसे बड़ी एक तो कंसर्न हमारी एनर्जी की है, एनर्जी मतलब तेल की इंपोर्ट, और इसको भी हमें अफोर्डेबल और प्रिडिक्टेबल रेट पे मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरी बड़ी कंसर्न है कि हमारी बहुत बड़ी वहाँ 6-7 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। नेचुरली अगर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, टेंशन होती है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें बहुत बड़ा पड़ेगा। और तीसरी बात है कि ये हमारी ट्रेड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वो सी लेन्स जो है वहाँ से काफी हमारी ट्रेड वहाँ से आती है।
सरना साहब, आपने बहुत सारे मौकों पर भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुत करीबी से देखा है, क्या आज की इस बातचीत के बाद इन रिश्तों को थोड़ा सा, या ये कहें कि बहुत बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक हथियारों के सौदे का भी मामला है।
देखिए, वो जो हथियारों के सौदे हैं वो मामला तो चलता रहता है क्योंकि ये क्लियर है कि भारत का यूएस के साथ डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ रहा है, जहां कुछ भी नहीं होता था अब 18 बिलियन डॉलर का अमाउंट है और हम कई प्लेटफॉर्म यूएस के यूज कर रहे हैं अब। ये इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारी और डिफेंस रिलेशनशिप्स नहीं है, जैसे रूस के साथ है, इसराइल के साथ है, तो वो भी हैं, लेकिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी जिक्र हुआ, ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो मेरे को लगता है कि ये एक एस्पेक्ट है हमारी रिलेशनशिप का जो काफी पॉजिटिव है, और कई तरह के चेंजेस भी हुए हैं यूएस की लॉज में, रेगुलेशंस में, कि हमें नई से नई टेक्नोलॉजी देने की परमिशन मिलती रहे। आज की मीटिंग में भी यही दिखा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा, कि इस मुद्दे पे भी बात हुई और पॉजिटिव बात हुई।
अगर भारत और अमेरिका के मुद्दों की बात की जाए, जो पेच हैं, एक का हमने जिक्र कर लिया, भारत और ईरान संबंधों की हमने बात की, उसके अलावा ट्रेड डील और हथियारों के सौदे की भी बात की, लेकिन इसके अलावा जो भारत के अपने वाणिज्य वाले मामले हैं, टैक्स को लेकर, टैक्स में रियायतों को लेकर जो मामला है, इस पर भी पोम्पियो को आप सकारात्मक देखते हैं?
दोनों विदेश मंत्री ने ये डिनाई नहीं किया कि मार्केट एक्सेस की इश्यूज हैं, टैरिफ्स के इश्यूज हैं, ई कॉमर्स का इश्यू है, ये कई तरह के ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन सेक्रेटरी पोम्पियो ने काफी साफ कहा कि हमें इनको, इन पेचों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है कि हम इनको रिजॉल्व कर लें, क्योंकि हमारी जो साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, खास करके इंडो पैसिफिक में, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि यूएस इंडिया को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी मानता है। तो ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में हमारी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और प्रॉब्लम्स कम है। जब ये दोनों अपने विदेश मंत्री अपनी अपनी सरकार से बात करेंगे, तो वो इस तरह से बात करेंगे कि देखिए ये जो ट्रेड इश्यूज हैं, इनको हम एक एक करके सुलझाएं। दोनों के हित हैं इसमें, लेकिन ये डिप्लोमेसी का यही मतलब है कि दोनों हितों को जितना हो सके उतना मिला दें।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री से मुलाकात। इस बातचीत का विश्लेषण कर रहे थे अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके नवतेज सरना।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। कल संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, अगर वो गटर में रहकर जीना चाहते हैं तो वो रहें। वो नेता कौन थे? अगर मुस्लिम नेता आरिफ मोहम्मद खान के दावे को सही माने तो जवाब है पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। मोदी ने संसद में क्या और किस परिप्रेक्ष्य में कहा और इसके बाद क्या बयानबाजी हुई, पूरी रिपोर्ट के साथ हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
संसद में कल और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और खासतौर से गांधी परिवार पर निशाना साधा। कल प्रधानमंत्री ने शाहबानो मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस के एक नेता के विवादित बयान को संसद में दोहराकर सबको हैरान कर दिया था।
शाहबानो का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है चौंकाने वाली है। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही। तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, इफ दे वॉन्ट टू लाई इन द गटर लेट देम बी।
उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये नहीं बताया कि ये बयान किस कांग्रेसी नेता का था। जब कांग्रेस की तरफ से पूछा गया कि उनके किस नेता ने ये बात कही है, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें यूट्यूब लिंक भेजे जाने की बात कही। इसके बाद इसका जवाब आया आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से। राजीव गांधी सरकार के वक्त मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान आज सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा,
नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो। शाहबानो ने भी अपना स्टेंस बदल लिया, वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानो के ऊपर, तो उसने अपना बयान बदल दिया था, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये नहीं चाहिए। तो उसने भी अपना बयान बदल दिया, तुम्हें क्या परेशानी है? और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो मैंने कहा साहब, मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है कि मैंने महिला अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी हो, मेरे सामने पर्सनल इंटेग्रिटी का सवाल है, मेरी अपनी नैतिकता क्या है। मैंने 55 मिनट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफेंड किया है लोकसभा में, अब सरकार कह रही है कि इस फैसले को बदलने के लिए हम कानून ला रहे हैं।
संसद में नरेंद्र मोदी ने आरिफ मोहम्मद खान के बयान का जिक्र किया था। इस पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, प्रधानमंत्री ने मेरे इंटरव्यू का उल्लेख कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कब तक समाज का एक तबका सत्तारूढ़ दलों को उसे धोखा देने का अधिकार देता रहेगा। इस इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा था कि शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए राजीव गांधी पर दबाव डाला गया था। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को शाहबानो तो याद है, लेकिन झारखंड में तबरेज अंसारी की हत्या हो गई वो उन्हें याद नहीं।
प्रधानमंत्री को शाहबानो याद है, तबरेज अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, को याद नहीं आता कि मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है, कौन रख रहा है पीछे को नीचे? आप रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट में कितने मुसलमान MP जीत कर आए? 300 में से आपके पास है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी बोलने में और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
हालांकि आज राज्यसभा में एक भाषण में प्रधानमंत्री ने इस मॉब लिंचिंग के वाक़े को सही नहीं करार दिया और इस पर दुख प्रकट किया। साथ ही ये भी कहा कि पूरे झारखंड राज्य पर आलोचना करना सही नहीं है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
संसद में पहली बार चुनकर आई तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने चिंता जताई है कि देश के मौजूदा हालात फासीवाद के शुरुआती संकेत जैसे हैं। संसद में पहली बार बोलते हुए उन्होंने इसके साथ संकेतों को रेखांकित किया। ऐसा वो क्यों सोचती हैं, ये जानने के लिए उनसे आज बात की BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने।
हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है।
लोकसभा के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में असहमति के अधिकार के बारे में बोलती तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। मंगलवार को संसद में ये उनका पहला संबोधन था और इसमें उन्होंने उन्मादी राष्ट्रवाद, मानवाधिकारों के प्रति सरकार की घृणा, मीडिया पर नकेल, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दुश्मन ढूंढना, सरकार और धर्म के आपस में मिल जाना, बुद्धिजीवियों और कला की उपेक्षा और चुनाव प्रक्रिया की स्वायत्तता कम होने जैसे 7 दावे किए और इन्हें फासीवाद के शुरुआती संकेत बताया। साथ ही यहूदियों की सामूहिक हत्या को याद करने के लिए अमेरिका के होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में साल 2017 में प्रदर्शित एक पोस्टर का हवाला दिया जिसमें फासीवाद के ऐसे ही शुरुआती संकेतों की सूची है। तो क्या उन्हें भारत में भी अब जनसंहार का डर है? फोन पर बातचीत में उन्होंने बताया,
फासीवाद सिर्फ जर्मनी में नहीं था, अब कई जगह है। मेरी बात का ये मतलब नहीं कि 60 लाख यहूदियों को मार दिया जाएगा, लेकिन ये साफ है कि फासीवाद के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये पुरानी लिस्ट है और बाकी आपके सामने है। फासीवाद बहुसंख्यकों के प्रभुत्व से जुड़ा है, जहां ये माना जाता है कि हम जो सोचते हैं वही सही है, बाकी सब गलत, और उसको अक्सर जन समर्थन मिलता है, जैसा कि अभी हुआ है।
पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आई महुआ मोइत्रा पहले लंदन में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। 10 साल पहले वो ये नौकरी छोड़ भारत आईं और राजनीति में जुड़ गईं। साल 2016 में वो करीमपुर विधानसभा क्षेत्र से जीती, जिसे 40 साल से वामदल ही जीतते आए थे। तब से वो तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। 2019 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपने प्रचार में भी मोदी सरकार की आलोचना करती रहीं। उन्होंने लोगों की जानकारी की निजता के हक की सुरक्षा के लिए याचिकाएं भी दायर की हैं।
हमारे पास डेटा प्राइवेसी कानून नहीं है और सरकार अध्यादेश के जरिए प्राइवेट कंपनियों को लोगों की जानकारी देने के प्रावधान बना रही है। हमारे देश में लोगों में निजता के बारे में जागरूकता नहीं है और सस्ती चीजों सेवाओं के लिए वो अपना डेटा देने से हिचकते नहीं है।
महुआ के मुताबिक ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है लोगों के हक में सही कानून लाना, लेकिन वो कॉरपोरेट और राजनीतिक हित को देख रही है। संसद के उनके पहले संबोधन में गर्मजोशी, गुस्सा और गुरूर तीनों का पुट था। अपनी बात खत्म करते वक्त उन्होंने राहत इंदौरी की एक हिंदी कविता पढ़ी और साफ कर दिया कि वो राजनीति में लंबी रेस के लिए आई हैं।
जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी ना है।
दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। थैंक यू।
ईरान अमेरिका का झगड़ा यूं तो बहुत पुराना है, लेकिन इस बार क्या नई बात हुई, किस बात पर तलवारें खींची हैं दोनों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह से बटा हुआ है, कौन किसकी तरफ है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इन दोनों की तनातनी में भारत की क्या दुविधा है, दुनिया जहान में आज इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रहे हैं संदीप सोनी।
दुनिया जहान। 11 सितंबर 2001 के चरमपंथी हमले के बाद अमेरिका ने एक नई रणनीति बनाई। कैंप डेविड में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा, इस हमले से ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। इसके जवाब में मीटिंग में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, हमले में यदि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता तो ये हमला और भी खतरनाक साबित होता। इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए तत्कालीन बुश प्रशासन ने एक व्यापक रणनीति बनाई, जिसमें ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को दुष्ट शैतान राष्ट्र कहते हुए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया। अमेरिका को डर था कि ये देश अलकायदा को परमाणु हथियार मुहैया करा सकते हैं। इसके आगे की कहानी अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान की जुबानी।
अमेरिका ने ये तय किया कि वो इराक में जाएगा, इराक में रिजिम चेंज लाएगा, फिर ईरान में जाएगा, ईरान में रिजिम चेंज, सीरिया में रिजिम चेंज और नॉर्थ कोरिया पे दबाव डालेगा। तो ये रिपब्लिकन्स की, नियो कंजर्वेटिव्स की वो तबका अमेरिका में जो ऑल्सो प्रो इज़राइल है, उनकी ये स्ट्रेटेजी थी। तो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से अगर आप देखेंगे तो अरबों का जो फलस्तीन के मसले में सपोर्ट था वो वीक होते जा रहा है। कोई अरब मुल्क अब फलस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए जंग लड़ना या रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी भी ईरान हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला ईरान का एक हिस्सा है और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसराइल को थ्रेटन करते हैं। ईरान ने अमरीकी जो कोशिश थी इराक वॉर के बाद मिडल ईस्ट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि वो अमरीका का एक सपोर्टिव रीजन बन जाए, वो ईरान ने बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो कहते हैं जो शिया आर्क, जो बेसिकली एक किस्म से अगर आप सऊदी अरेबिया को सेंटर में लेकर उसके अतराफ एक कर्व ड्रॉ करें, विच गोज फ्रॉम लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, बहरीन, तो आपको एक शिया आर्क बनती है सऊदी अरेबिया के खिलाफ अतराफ। तो ये शिया पावर का एक आर्क ईरान ने पोस्ट इराक वॉर बना लिया। तो ये सारी चीजें अमरीका के इजरायली इंटरेस्ट को हर्ट करती है। और जब से यमन की जंग शुरू हुई है, सऊदी अरेबिया भी बहुत परेशान हो गया है कि वो समझता है कि ईरान सऊदी अरेबिया को भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो एक किस्म से ईरान के खिलाफ एक नया एक्सिस बन गया सऊदी अरेबिया और यूएई, इजरायल और अमेरिका, और वो समझते हैं कि मौका अब राइप है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस और धमकियां डालने से ईरान की आवाम जो करंट गवर्नमेंट से नाखुश है वो उनको तख्ता बदल देगी और एक नया रिशीम आ देगी। ये सोच है वॉशिंगटन में।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव की शुरुआत उस वक्त हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ने की बात कही, उसके बाद दोनों के बीच तनातनी बढ़ती चली गई।
दो तीन आरोप लगाए गए ईरान पर, एक तो ये था कि जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, उन पर अटैक हुए, वो थर्ड पार्टी थर्ड नेशन के टैंकर्स थे और उसमें ये कहा गया कि ईरान का इसमें हाथ है, क्योंकि वो जो ऑयल का मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा है जिससे कि सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़े। दूसरा अनमैन्ड ड्रोन, जिसको कि ईरान को ये कहा गया कि ईरान ने इसको टारगेट किया, अमरीकी ड्रोन था, तो कहीं पर ये प्रेशर बन रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो रिएक्ट करें, और उन्होंने रिएक्ट भी किया जैसी खबरें आई कि उन्होंने पहले तो ये विचार बनाया कि वो अटैक करेंगे, फिर उन्होंने कुछ ही घंटों में उस डिसीजन को वापस ले लिया। खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को असेस किया कि अगर वो अटैक करते हैं, अगर मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ईरान पर काफी तगड़े सैंक्शन लगाने की जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है।
ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्प से अमेरिका पीछे क्यों हटा? क्या वाकई वही वजह थी जो राष्ट्रपति ट्रंप ने बताई, या असलियत कुछ और है? इस सवाल पर प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
ये ट्रंप की जो एक्सप्लेनेशन है कि जो हम काउंटर अटैक करने वाले थे उसमें 150 लोग मारे जाते हैं और ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, उन्होंने तो एक अनमैन्ड व्हीकल को गिराया और हम ऐसे टारगेट्स पे जिसमें जिंदा लोग हैं उसे कैसा टारगेट कर सकते, इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। लेकिन अंदर से जो बातें आ रही है उसका ये बात है कि ट्रंप की जो ओरिजिनल इंस्टिंक्ट है और शुरू से ये रही है कि वो मिडिल ईस्ट में जंगों में इन्वॉल्व होने के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। उनका नजरिया ये है कि अमेरिका जब भी जंगें लड़ा है इस रीजन में, सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान हुआ है फाइनेंशियली और अदरवाइज, और इराक वॉर से वो साबित हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि उनको समझ में भी आ गया कि उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो जंग चाहते हैं, ईरान के साथ जंग तो पॉज बटन दब गया है, लेकिन अगर ईरान कुछ और प्रोवोकेशन कर देता है तो मेरे ख्याल से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रो जंग लोग हैं वो शायद हावी हो जाए फिर से।
Iran wants to become a wealthy nation again, become a prosperous nation. We'll call it, let's make Iran great again.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान को दोबारा धनी संपन्न बनाया जाए। ईरान के मामले में अमेरिका कह रहा है कि वो अपना रवैया बदले तो उसके खिलाफ लगे प्रतिबंध हट सकते हैं और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि बातचीत की डिप्लोमेसी अब खत्म हो गई है।
ما هر پیمانی رو زیرش میزنیم، هر امضایی رو زیرش میزنیم، اون وقت از نو بیایم با شما مذاکره کنیم.
بعد تیل کی کریں تو امریکہ کو ایران کے تیل کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا کے کئی ملک ایران کے تیل کے بنا نہیں چل سکتے، ان میں بھارت کی دویدہ بھی شامل ہے۔ پروفیسر ہرش پنت بتاتے ہیں،
بھارت کی جو فورن پالیسی ہے مڈل ایسٹ میں اس میں تین پلرز ہیں، اس میں ایک تو کھاڑی کے عرب دیش ہیں، دوسرا ایران ہے اور تیسرا اسرائیل ہے، اور تینوں کے ساتھ بھارت کے اچھے سمبندھ ہیں۔ समस्या भारत के लिए जो आएगी, दुविधा ये आएगी कि अब जैसे जैसे ईरान पर प्रेशर बनेगा, जिस तरह के सैंक्शन ईरान पर लगाए गए हैं, भारत को चूज करना पड़ेगा। इसमें दो दुविधाएं हैं, एक तो ये है कि भारत के जो अपने स्टेक्स हैं दूसरे देशों में वो भी काफी ज्यादा हैं, चाहे वो अरब देश हो या इसराइल हो या अमरीका हो, भारत के उनके साथ एक्सपेंसिव रिलेशनशिप रहे हैं और भारत के अपने इंटरेस्ट उनके साथ हैं, तो उनको मैनेज करना पड़ेगा अगर ईरान को देखना है। दूसरा, भारत को ये देखना पड़ेगा कि कहीं पर जो भारत की अपनी एनर्जी पॉलिसी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इतने सैंक्शंस ईरान पर लगे हैं, भारत बहुत कुछ नहीं कर सकता ईरान के साथ। भारत की सरकार ये जरूर कह सकती है कि हम ये सैंक्शंस नहीं मानते, लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं वो ईरान से तेल कैसे खरीदेंगी, जबकि जो सारी अर्थव्यवस्था है तेल के चारों तरफ वो वेस्ट डोमिनेटेड है, वो अमेरिका डोमिनेटेड है। अगर लॉजिस्टिक्स है, इंश्योरेंस है, शिपिंग है, ये सब अमेरिकी मार्केट डोमिनेट करता है। भारत सरकार ये जरूर कहती है कि हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते, लेकिन जो कंपनियां हैं उनको तो मानना पड़ेगा, तो कहीं पर वो एक दुविधा है।
भारत के लिए अगली दुविधा ये है कि वो ईरान के साथ अपने संबंधों को किस तरह संतुलित करे। ईरान के साथ भारत का सिर्फ तेल का संबंध नहीं है, भारत ने चाबहार बंदरगाह में बड़ा निवेश किया है। चाबहार से भारत मध्य एशिया में मजबूत होना चाहता है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से भारत ईरान संबंध उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरह से भारत चाहता है। इसमें और भी कई पहलू हैं, और इन सारे पहलुओं में भारत की दुविधा इतनी आसानी से कम नहीं होगी। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को विकल्प की तलाश है, और वो विकल्प क्या होगा ये अभी तय नहीं है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
और इससे पहले कि आपसे विदा लें, आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 238 रनों का लक्ष्य रखा है। दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। मुलाकात सवेरे 6:30 बजे। नमस्कार भारत में दीपक जसरोठिया के साथ मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।